यह आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में प्रस्तुत है पीएम स्वनिधि योजना की महत्वपूर्ण उपलब्धि पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ राजनीतिक पत्रकार विजय क्रांति और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।
किसी भी अर्थव्यवस्था में हर उस व्यक्ति का योगदान होता है जो अपने उद्यम के माध्यम से, अपनी आजीविका के जरिए उस अर्थव्यवस्था में योगदान देता है, चाहे वो एक बहुत बड़ा उद्योगपति हो या एक सड़क के किनारे रेड़ी लगाने वाला व्यक्ति। तो ये तो एक तथ्य है ही कि एक बड़े उद्योगपति या किसी बड़े उद्यम के लिए वित्तीय सहायता के बहुत से स्रोत होते हैं, लेकिन जब बहुत बड़े असंगठित क्षेत्र यानी रेड़ी पटरी वालों की बात होती है तो उनके पास वित्तीय सहायता या किसी तरह की ऋण सहायता के स्रोत नहीं होते हैं, जिस वजह से किसी भी आपातकालीन स्थिति में उनके सामने जब संकट की स्थिति बनती है तो उन्हें उससे जूझना पड़ता है और उनका जीवन इससे प्रभावित होता है। कोविड महामारी के दौर में हमने देखा कि किस तरह से रेड़ी पटरी वालों के रोजगार पर जब असर हुआ तो सरकार ने एक बड़ी इनोवेटिव योजना एक प्रस्तुत की, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि यानी पीएम स्वनिधि योजना। इस योजना के माध्यम से इन रेड़ी पटरी वाले साथियों को ऋण प्रदान करके उनकी आजीविका को सुरक्षित किया गया और तब से लेकर अब 3 साल इस योजना को हो चुके हैं और हमारे सामने इस योजना से जुड़ा हुआ एक बड़ा सकारात्मक आंकड़ा है कि लगभग 50 लाख लाभार्थी इस योजना से लाभ ले चुके हैं, उन्हें ऋण प्राप्त हो चुका है और करीब 66 लाख के आसपास ऋण मिल चुके हैं। तो आज इस योजना की इस सफलता पर प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर अपना एक संदेश भी साझा किया और शहरी और आवासन मंत्रालय की एक सोशल मीडिया के जवाब के माध्यम से उन्होंने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना न केवल रेड़ी पटरी वालों का जीवन आसान बना रही है बल्कि इससे उन्हें सम्मान के साथ जीने का अवसर भी मिल रहा है। तो आज इस उपलब्धि पर और इस योजना पर विस्तार से हम कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक विजय क्रांति जी। विजय जी स्वागत है।
जी नमस्कार
जी। तो विजय जी, जो प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि यानी पीएम स्वनिधि योजना है, 2020 में इसकी शुरुआत हुई थी और तब से लेकर अब तक एक रिकॉर्ड लोन वितरण यानी 50 लाख लाभार्थियों को इस योजना के माध्यम से लोन प्राप्त हुआ है। सबसे पहले आपकी इस उपलब्धि पर टिप्पणी कि किस तरह से इन 3 साल में इस योजना ने ये बड़ी उपलब्धि दर्ज की है।
देखिए, एक बात तो ये माननी होगी कि पिछले कुछ साल में जो परिवर्तन हो रहा है भारत की अर्थव्यवस्था में और जो सरकार और जनता के बीच जो रिश्ता है उसमें जो परिवर्तन हो रहा है वो सचमुच में एक ऐसी नई चीज है जो सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों के लिए हैरानी की भी बात बनी हुई है और आकर्षण की भी बात बनी हुई है।
जी,
अब ये जो सवाल है कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, ये जो रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं, उनको आपने अभी जो चर्चा की कमल जी के, वो अभी तक मूल जो अर्थव्यवस्था है उसमें शामिल नहीं थे। वो सचमुच में पिछले 60-70 साल से वो हर रोज जो लोग अपनी रेहड़ी लगाते हैं, पटरी लगाते हैं, सिर पर छाबड़ी लेके चलते हैं, अपना सामान बेचते हैं, वो अपने घर के लिए भी कमाई कर रहे हैं और जो देश भर में उत्पादन हो रहा है हर किस्म की चीजों का, उनको भी इंडस्ट्री से लेकर और आम उपभोक्ता तक पहुंचा रहे हैं। वो बहुत बड़ी कड़ी है। देखने में एक जो वेंडर है, जो एक छाबड़ी वाला है, रेहड़ी वाला है, वो एक बहुत छोटा व्यापारी जैसा दिख सकता है, लेकिन उनकी संख्या इतनी बड़ी है, करोड़ों में है, कि अगर उनके योगदान को देखा जाए तो ये कहा जा सकता है और ऐसे अध्ययन हो चुके हैं कि जिनमें पाया गया है कि ये जो इकोनॉमी है इन लोगों की, जो अनऑर्गेनाइज जिसको कहा जाता है या छोटे अगर हम इनको उद्यमी कह सकें, ये इनका जो कुल योगदान है वो देश की जो सबसे बड़े बड़े उद्योग हैं उनके मुकाबले बहुत ज्यादा है। लेकिन इनका दुर्भाग्य ये है कि ये इतनी छोटी छोटी बूंदों के रूप में आते हैं अर्थव्यवस्था में कि वो गिने नहीं जाते। देखिए, मैं कोई नहीं बात करता कि एक छाबड़ी वाला जो है उसने एक महीने में अगर कुल मिला के 4,000-5,000 रुपए अपने घर के लिए कमाए तो वो किसी को लगता है ये कुछ भी नहीं है। लेकिन जब आप सोचेंगे कि कई करोड़ लोग ये काम कर रहे हैं तो फिर ये आंकड़े बहुत बड़े हो जाते हैं।
निश्चित रूप से
ये तो एक मुझे लगता है कि जो 50 लाख वेंडर्स को, रेड़ी खोमचे वालों को इस निधि में, इस योजना में शामिल आज हो गए हैं, उतनी संख्या हो गई है, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारतीय अर्थव्यवस्था की, भारतीय समाज की भी बड़ी एक उपलब्धि है। कि वो लोग जो अभी तक कहीं गिने नहीं जाते थे, आज उनको एक ऐसा मुकाम मिला, एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया है जहां से वो अपने लिए बड़े आराम से उधार ले सकते हैं बैंकों से,
बिल्कुल,
और उन्हें वो हर तरह की सुरक्षा मिलती है।
जी जी।
वरना इससे पहले ये होता था कि उधार तो वे तब भी लेते थे, वो किसी पड़ोसी से लेते थे या उस इलाके के किसी ऐसे दादा से लेते थे जिसका काम धंधा ही उधार देना है।
बिल्कुल, हमारी जो वित्तीय व्यवस्था थी उसमें ऐसे स्रोतों पर उन्हें निर्भर रहना पड़ता था जिनका आपने जिक्र किया कि वो औपचारिक तरीके से जुड़े नहीं थे अर्थव्यवस्था से। और सरकार का ये फोकस रहा है अपनी कई योजनाओं के माध्यम से कि जो उद्यमी हैं, जैसे हम विश्वकर्मा योजना से उदाहरण ले सकते हैं कि विश्वकर्मा योजना के माध्यम से भी सरकार ने एक बहुत बड़े कामगार वर्ग को कोलेट्रल फ्री लोन देने की व्यवस्था की है, ट्रेनिंग की व्यवस्था की है। और इसी तरह से हम पीएम स्वनिधि योजना के स्वरूप को भी ऐसा ही कुछ देखते हैं कि इस योजना में 50,000 रूपये तक का एक कोलेट्रल फ्री लोन मिलता है, यानी जो बिना शर्त या गारंटी का ऋण देने की व्यवस्था है वो भी बैंकों के माध्यम से, औपचारिक वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से, वो इन योजनाओं के माध्यम से ये संभव हुआ है कि ऐसे छोटे कामगार, और हम इस योजना के माध्यम से रेड़ी पटरी विक्रेताओं की बात कर रहे हैं, तो उनको लोन मिलना संभव हुआ है।
बहुत अच्छा पॉइंट लिया है, बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपने जो टर्म इस्तेमाल की ना अंग्रेजी की, विदाउट कोलेट्रल, बिना कोलेट्रल के उनको उधार मिलता है, तो आम लोगों को शायद कोलेट्रल समझ में नहीं आता। इसको साफ भाषा में कहा जाए बड़े आसान से कि बिना कुछ रेहन रखे हुए, बिना कुछ गिरवी रखे हुए अगर किसी को उधार मिलता है तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और आमतौर पर क्या होता है कि अगर कोई अच्छा खाता पीता आदमी है, व्यापारी है, दुकानदार है, या हम ही जैसे लोग हैं जो भले पत्रकार हों या कोई और नौकरी करने वाले हों, जब वो उधार मांगने जाते हैं तो उनकी जिसको साख कहते हैं ना, चेहरा देखकर उधार मिल जाता है। ये वो वर्ग है जिनके पास चेहरा भी नहीं है, इनको अभी तक उधार कोई देने वाला नहीं था, जो देता था वो कुछ गिरवी रखता था, भले उसकी पत्नी के कड़े रख ले, गहने, कोई और कोई भी चीज रख ले, या कोई और कुछ लिखवा ले, अंगूठा लगवा ले, ताकि बाद में उसको पूरी तरह वो बांह मरोड़ कर पैसे वसूल कर सके और मन मांगा ब्याज ले सके। ये जो इस तरह की जो योजनाएं हैं उन्होंने भारत के उस वर्ग को बहुत बड़ी राहत दी है कि जिनको कोई उधार नहीं देता था, उधार देता था तो बहुत खराब और मनमानी टर्म्स पर देता था, और उधार ना चुकाने की हालत में उनका बहुत बुरी तरह प्रताड़न होता। अब यह है कि वो व्यक्ति जिसके पास पूंजी के नाम पर कुछ खास नहीं है, अपनी रेहड़ी है, कुमचा है, वो भी बैंक में जाकर अपना मोबाइल ले जा सकता है कि ये देखिए मेरी ऐप में स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि में मुझे सैंक्शन हो गया है ये लोन 1,000 रूपये का, 5,000 रूपये का, तो आप मुझे दीजिए, और बैंक मैनेजर खुश होकर उसको देता है बिना कोई गारंटी लिए हुए। इससे जो नया आत्मसम्मान, आत्मविश्वास जो पैदा होता है वो बहुत बड़ी बात है।
बिल्कुल, इस योजना में एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू ये है कि जैसे इसमें हम माइक्रो क्रेडिट लोन की बात कर रहे हैं, तो इस सुविधा के अलावा पीएम स्वनिधि योजना के तहत जो हमारे स्ट्रीट वेंडर साथी हैं उनको डिजिटल भुगतान के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। एक इस योजना का अगर फीचर अपने श्रोताओं को मैं बताना चाहूं कि इसमें अगर ट्रांजेक्शन हमारे रेडी पटरी वाले साथी ऑनलाइन करते हैं या ऑनलाइन पेमेंट लेते हैं तो उन्हें सालाना 1200 रूपये का एक इंसेंटिव मिलेगा, यानी हर महीने 100 रूपये का। हालांकि ये इंसेंटिव है, तो इस तरह के इंसेंटिव से हमने देखा है कि डिजिटल लेन देन को बहुत ज्यादा इससे बढ़ावा मिला है। और जब हम डिजिटल लेन देन की विजय जी बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे जो हमारे संस्थान हैं, बैंक हैं, वो भी सामने आए हैं और उन्होंने डिजिटल भुगतान, जिन्हें हम डिजिटल पेमेंट एग्रीगेटर्स कहते हैं, तो उन्होंने डिजिटल भुगतान के लिए ऑनबोर्ड ट्रेनिंग देने की भी पेशकश की है। और बहुत सारी इसमें हमने उदाहरण भी देखे हैं कि ऐसे कई हमारे विक्रेताओं को उन्होंने ट्रेनिंग दी है। तो जिस तरह से एक पूरा सिस्टम बन रहा है, इकोसिस्टम बन रहा है डिजिटल पेमेंट का, और खासतौर पर इस असंगठित क्षेत्र में जहां हम अगर किसी खोमचे से चाट खाते हैं या किसी खोमचे से चाय पीते हैं तो वहां हम डिजिटल तरीके से पेमेंट करते हैं और वो स्वीकार करते हैं, इससे किस तरह से अर्थव्यवस्था को फायदा हो रहा है, और साथ ही एक व्यक्तिगत तौर पर उस रेड़ी पटरी वाले के जीवन में इससे किस तरह से बदलाव आ रहा है।
देखिए ये बदलाव सचमुच में कमाल का है, और मैं कमाल जब जैसा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ वो इसलिए कर रहा हूँ कि भारत में पिछले कुछ साल में जब से डिजिटल लेन देन शुरू हुआ है वो इतनी तेजी से और इतने बड़े पैमाने पर विकसित, बढ़ा है, फैला है कि दुनिया देखकर हैरान है। पूरे यूरोप में जितना डिजिटल लेन देन होता है आम लोगों के द्वारा, उससे कहीं ज्यादा भारतीय लोग करते हैं।
बिल्कुल।
अमेरिका वाले आज हैरान हैं कि इतना बड़ा आप कैसे कर लेते हैं, क्योंकि हमारे भारत में जिस तरह से मोबाइल का फैलाव हुआ है, फिर उससे ये जो एप्स अलग अलग काम करने लगी हैं, जो मोबाइल है वो आम रेहड़ी वाले की पहुंच तक, उसकी जेब तक वो भी पहुंचा है, उसके हाथ में मोबाइल भी है। तो ये जो परिवर्तन हुआ है टेक्नोलॉजी का, ये जो रेहड़ी खोमचे वाला है उसको कई तरीके से लाभ दिया है। एक ऐसी चीज है जिसको मैं आपको, अगर आपसे और हमारे जो सुनने वाले हैं उनसे शेयर करूं तो वो सहमत होंगे। मुझे अपने घर में बढ़ई का काम कराने के लिए कई बार बहुत अच्छे मिस्त्री मिले, लेकिन 6 महीने बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद जब मुझे अचानक उसकी जरूरत पड़ी तो जाकर देखा कि जहां वो किराए पर रहता था वहां तो नया घर बन गया, वो तो घर छोड़कर चला गया, लोगों को उसका पता नहीं है, तो मुझे वो नहीं मिला, मैं किसी और को ढूंढ रहा हूँ। उस बेचारे को ग्राहक चला गया और मेरे लिए काम करने वाला, मुझे अच्छा जो उसको पहचान थी वो नहीं मिला। लेकिन अब जो ये जो मोबाइल हर कामगार के हाथ में आ गया है, मतलब तो जो घरों में काम करने वाली मेड्स हैं उनके पास है, गली में सफाई करने वाले हैं, बढ़ई हैं, मजदूर हैं, मिस्त्री हैं, ये सबके पास हो गया। तो अब ये है कि अब मुझे अगर वही मिस्त्री से बात करनी है कि भैया मेरे पास काम है, मेरे पास उसका मोबाइल नंबर है और वो मुझे वापस जवाब देता है कि सर मैं आज शाम का काम खत्म करके आपके पास आता हूँ, उसे एक नई असाइनमेंट मिल जाती है।
जी।
ये जो आपने अभी बात बहुत अच्छी कही कि वो चाय आप खरीदते हैं पटरी से, ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ हम कई बार गमला खरीदने के लिए या तो मिट्टी के बर्तन खरीदने के लिए जाते हैं, तो एक लड़की है जिसने सड़क के पास तिरपाल डालकर अपनी एक छोटी सी जगह बना ली है, वहाँ वो अपना कुम्हार की चीजें बेचती है। अब उसके पास वो जो के दो तरह के पेटीएम और वो भीम और वो सबके वो जो लगे हुए हैं, आपको जो चीज खरीदनी है आप सीधा खरीद लीजिए।
बिल्कुल, बिल्कुल।
तो उसको सुविधा। अच्छा, एक और जो बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, जो छोटा व्यापारी था उसको दिक्कत थी कि आपके पास रेजगारी नहीं है, कई बार आधा काम इसलिए खराब हो जाता था कि साहब चेंज नहीं है। अब ये जो जब आप पेमेंट करते हैं ऑनलाइन तो उसमें रेजगारी जो है उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती।
बिल्कुल।
तो उसको 4.50 रुपए देने हैं तो आप 4.50 रुपए पूरे मिल जाएंगे, ये नहीं कि आपको तकलीफ हो रही है मैंने 5 रुपए दिए। तो ये एक सुविधा भी हुई है, एक दूसरे के लिए सम्मान का रिश्ता भी बना
जी,
है
जी।
और जो सुरक्षा मिली है छोटे व्यापारी को, जो रेहड़ी पहुंचे वाले को, छोटे दुकानदार को, कि मैं जो चीज दे रहा हूं उसके मुझे पैसे अभी मिल जाएंगे, ये बहुत बड़ी बात है।
बिल्कुल। ये और ये आंकड़े भी हैं विजय जी हमारे पास जो इस बात को पुष्ट करते हैं, वो ये कि जैसे अगर हम पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत देखें तो इन 3 साल में 1,33,000 करोड़ रुपए मूल्य का ट्रांजैक्शन हुआ है ऑनलाइन, जो हमारे रेहड़ी पटरी वाले साथियों ने किसी भी व्यक्ति से लिया है। और साथ ही एक और आंकड़ा है कि लगभग 113 करोड़ रुपए से अधिक डिजिटल लेन देन हुए हैं, यानी उनकी संख्या इतनी ज्यादा है, जिसमें लाभार्थियों को लगभग 58 करोड़ रुपए का सरकार द्वारा कैशबैक भी वितरित किया गया है, जिस कैशबैक की अभी मैंने चर्चा की थी कि हर साल 1,200 रुपए का इंसेंटिव मिलता है, यानी हर बिक्री पर 1 रुपए का इंसेंटिव, महीने में अधिकतम 100 रुपए का इंसेंटिव। तो ये नतीजे दर्शाते हैं कि किस तरह से एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो रहा है एक औपचारिक अर्थव्यवस्था का।
आपने कहा ना कि 1,30,000 करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ, जरा आप सोचिए कि आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले अगर आप बात करें कि रेहड़ी खोमचे वाले का योगदान क्या है, तो ज्यादातर लोग यही कहते हैं, बड़े बड़े अर्थशास्त्री भी कहते हैं छोड़िए क्या है, कुछ नहीं है, 5 रुपए 4 रुपए वाले लोग हैं। लेकिन आज जब वो सारे आंकड़े डिजिटल लेन देन से सामने आ रहे हैं और 1,30,000 करोड़ रुपए की बात होती है, तो आप ये सोचिए कि ये दिखाता है कि नंबर एक के कितने बड़े पैमाने पर आर्थिक लेन देन हो रहा है, कितने बड़े पैमाने पर लोगों को काम करने की, रोजगार कमाने की सुविधा मिल रही है। और वरना ये पैसा जो है वो कहीं गिना नहीं जाता, जिसको आप ब्लैक मनी कहते हैं, अनअकाउंटेड मनी कहते हैं, है ना, सारा पैसा वो था, अब वो अर्थव्यवस्था में गिन कर आ रहा है। तो उसका जो लाभ है, उसका भले वो जीएसटी आता है उसमें से मिलता है, वो राज्यों को जाता है, वो केंद्र सरकार को जाता है, और उससे उसका जो अपना, अब 1,30,000 करोड़ रुपए में से जो जीएसटी का हिस्सा होगा, आप सोचिए उससे पूरे 10-15 गांव की सड़क बन सकती है।
बिल्कुल।
ये जो सारा परिवर्तन हो रहा है, एक तो ये है डिजिटाइजेशन, दूसरा ये कि सरकार ने इतनी योजनाएं शुरू की है कि जो उन लोगों को अर्थव्यवस्था में शामिल कर रही हैं, बड़ी इज्जत से शामिल कर रही हैं, आत्मविश्वास उनको दे रही हैं, उनको आगे बढ़ने का मौका दे रही हैं, जिन लोगों को पहले हिम्मत भी नहीं थी कि वो कभी किसी बैंक के दरवाजे में घुस सकें।
जी,
ये वो लोग थे जिनको बैंकों के दरवान ही बाहर, जो गनमैन खड़ा होता है वो धकिया के बाहर करते, अरे जाओ यहाँ से, तुम्हारा क्या कारण है यहाँ। आज वो उस बैंक में शामिल है, उसके पास अकाउंट है, उस अकाउंट से वो लेन देन करते हैं, क्रेडिट डेबिट कार्ड चलाते हैं, और उनकी जिंदगी भी आसान हो गई है, काम करना आसान हो गया है।
बिल्कुल,
तो ये बहुत बड़े परिवर्तन है।
बिल्कुल बिल्कुल। और वापस 50 लाख ऋणों की मैं उस उपलब्धि पर आना चाहूंगा जिसमें रेडी पटरी वालों को लगभग 66 लाख ऋण मिले हैं, और हम एक आंकड़ा शेयर करें तो लगभग 8,600 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन वितरित किया गया है। और हमने देखा है कि इसमें कई राज्यों ने बहुत ही उत्साहवर्धक आंकड़े प्रस्तुत किए हैं और इस योजना की उल्लेखनीय उपलब्धि सामने आई है। पिछले 3 महीनों में ही हम देखें तो राज्यों में 12 लाख से अधिक नए विक्रेता इसमें जुड़े हैं, और ये अब तक का एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है जहां 12 लाख से अधिक विक्रेताओं को जोड़ने में, उनके नामांकन में इसमें मदद मिली है। और वर्तमान में मध्य प्रदेश, असम और गुजरात, ये वो राज्य हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा प्रगति की है और अच्छा प्रदर्शन इस योजना के माध्यम से किया है। अगर हम शहरों की भी बात करें, क्योंकि ये शहरी रेडी पटरी वालों के लिए योजना है, तो इसमें अहमदाबाद, लखनऊ, कानपुर, इंदौर और मुंबई, ये शहर आते हैं जिसमें इस योजना का लाभ यहाँ के शहर के रेडी पटरी वाले साथियों को मिला है। इन शहरों ने उल्लेखनीय काम किया है। हालांकि ये देखा जा रहा है कि सभी राज्य इस योजना को उत्साह से ले रहे हैं और इस योजना के लाभ को इन लाभार्थियों तक पहुंचा रहे हैं। तो ये उपलब्धि है जो मैंने अभी आंकड़े शेयर किया और राज्यों का प्रदर्शन है, इस पर आप क्या कहेंगे?
देखिए, मैं इसको एक तरह से डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी कहता हूँ। जो अर्थव्यवस्था है उसका, जो आप कहेंगे कि लोकतंत्रीकरण जो हो रहा है ना, वो बहुत बड़ी चीज है और बहुत नया आयाम है भारतीय व्यवस्था का, तो भारतीय राजनीति का भी, भारतीय अर्थव्यवस्था का भी, कि इसमें उन लोगों तक ये, जिसको कहते हैं ना, शामिल करना, जो अभी तक जो समझिए कि खेल से बाहर थे, वो अब मुख्य खेल धारा में उनको शामिल करने का काम जो लोकतंत्रीकरण हुआ है, कि अभी हम जो चर्चा कर रहे थे कि एक गरीब से गरीब आदमी भी बैंक खाता खोल सकता है,
बिल्कुल,
और चेक से भी पेमेंट कर सकता है, डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकता है, वो उसके जो पीआई वाला खाता है उसमें कोई भी पेमेंट कर सकता है। तो इसने जो नए आयाम खोले हैं ना उद्यमियों के लिए, मतलब बड़े उद्यमियों के लिए तो पहले ही सुविधाएं, दुकानदार जो छोटा दुकानदार है, जिसके पास पक्की दुकान है, उसके पास फिर भी एक ठिकाना था, ठिया था, जहां से वो काम कर सकता था, करता है। लेकिन जिनके पास ठिकाना नहीं है, उनको भी एक, जैसे ये मोबाइल ने एड्रेस दे दिया, उनके पेटीएम अकाउंट ने या यूपीआई भीम के अकाउंट ने उनको खाता बना दिया, जो जिसको पेमेंट दुनिया में कहीं से भी हो सकती है। तो ये जो सुविधा है उसने बहुत सारी जंजीरें तोड़ दी हैं, जो खामखा में छोटा व्यापारी है, छोटा उद्यमी है, पटरी और खोमचे वाला व्यक्ति है, उसके लिए इस व्यवस्था में शामिल होना और पूरे आत्मविश्वास के साथ, आत्मसम्मान के साथ, मैं इसको लोकतंत्रीकरण कहता हूँ अर्थव्यवस्था का।
बिल्कुल,
ये बहुत बड़ी। और एक और बहुत अच्छी बात जो हो रही है, ये जो योजनाएं आई हैं, जो छोटी छोटी योजनाएं जो चल रही हैं, जिसमें लोगों को बैंक का अकाउंट मिल रहा है, सुविधाएं मिल रही हैं, भले मुफ्त गैस की मिल रही हो, ये सारी छोटी चीजें नहीं है। ये इसमें कहीं धर्म नहीं है, इसमें कहीं जाति नहीं है। तो एक जो नया, जिसको कहें ना, मुहावरा शुरू हो रहा है, जो धर्म से भी ऊपर है, जाति से भी ऊपर है, और सीधा सीधा आम व्यक्ति, एक व्यक्ति, उसको जो सम्मान मिल रहा है, जगह मिल रही है, जैसे पीएम जीवन ज्योति योजना है, पीएम सुरक्षा बीमा योजना है, जन धन योजना है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना है, पीएम श्रम योगी मानव मानधन योजना, ये जितनी चीजें हैं, ये सिर्फ ये नहीं दिखाती हैं कि किसी गरीब को पैसे मिल रहे हैं, वो ये भी दिखाती हैं कि किसी गरीब को सिर्फ गरीब होने की वजह से मदद मिल रही है, किसी एक धर्म का, किसी एक जाति का व्यक्ति होने के कारण नहीं मिल रही।
बिल्कुल,
ये जो पहचान है हिंदुस्तानी की, अपने व्यक्ति की पहचान इसने जो बनानी शुरू की है, मुझे लगता है कि ये जो जाति धर्म वाली जो पहचान है वो उसको ये सब व्यक्तिगत स्तर पर बिठा देगा और हर किसी को उसकी अपनी पहचान, अपनी औकात, अपना जो रुतबा है वो देने वाला है और वो शुरू हो गया है। और मुझे लगता है कि जो सबसे मुझे अच्छा ये लगता है कि ये शुरू बहुत नीचे से हो रहा है, उस व्यक्ति से हो रहा है जिसकी पहले कोई सुनता नहीं था। मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ा योगदान है
जी जी बिल्कुल।
अर्थव्यवस्था पूरा और सामाजिक व्यवस्था में वो जो बांटने वाली जाति और धर्म वाले एलिमेंट्स थे वो अब गौण होने लगे हैं।
इस तरह की योजनाओं से विजय जी हम देखते हैं कि एक पूरा डेटाबेस तैयार होता है, क्योंकि जब हम एक औपचारिक तरीके से लाभार्थियों को जोड़ते हैं, जैसे हम आधार की बात करें, आधार केवाईसी की, तो उस पीएम स्वनिधि योजना में भी सभी लोगों का डेटा अब सरकार के पास है। और इससे फायदा ये होता है कि इस तरह की योजना के माध्यम से जब डेटा एक तैयार होता है तो जो दूसरी तमाम योजनाएं हैं उनके कार्यान्वयन में इससे बहुत ज्यादा आसानी होती है। हम इससे उदाहरण इस तरह से लें कि अब जो हमारे रेडी पटरी वाले विक्रेता हैं जो इस योजना के लाभार्थी हैं, तो उनके परिवार वालों के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, आपने कई योजनाओं का जिक्र किया, स्वास्थ्य और वित्तीय समावेश की योजनाएं, तो उनकी व्यवस्था बनाने में, उनकी आधारशिला रखने में इस योजना से बहुत लाभ हो रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पर 4 जनवरी 2021 को एक योजना शुरू हुई थी स्वनिधि योजना के तहत ही, स्वनिधि से समृद्धि। इस पहल का मकसद भी यही था कि जो समग्र विकास है उसको बढ़ावा देते हुए लाभार्थियों के परिवारों को सरकार की 8 सामाजिक और आर्थिक कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा। तो ये जो पूरा माध्यम बना है, पूरा इकोसिस्टम बना है जिसमें कि ऑनलाइन अब सब डेटा अवेलेबल है सरकार के पास, उससे कैसे हम सभी योजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक पहुंचाने में सक्षम हो रहे हैं।
ये जो पॉइंट आपने जिसकी चर्चा की है कि डॉक्यूमेंटेशन होना और जो सारा जो आंकड़े जो है, जो भी डिजिटल जानकारी है व्यक्ति के बारे में, उद्योगों के बारे में, व्यवसायों के बारे में, ये इस तरह के जब कार्यक्रम चलते हैं, स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि जैसी चीज चलती है, तो वो उन आंकड़ों को बहुत मजबूती देते हैं, बड़ा सही आधार देते हैं। उसमें कल्पना वाला, जैसे पहले जो अर्थशास्त्री थे उनका आधे से ज्यादा काम कल्पना पर चलता था, अगर इतना है तो बाकी लोग कितने होंगे, अगर इतने वेंडर हैं तो उनके घर के लोग कितने होंगे। लेकिन अब जो है, जो वेंडर है उसके बारे में पूरी जानकारी है, उसके घर में 5 लोग हैं 6 लोग हैं, तो सरकार को पता लगता है कि अगर 50 लाख लोगों को ये ऋण मिला है तो इससे कितने लोग प्रभावित हुए हैं। अगर आप मेरे जैसा भी व्यक्ति कैलकुलेट करेगा, हिसाब लगाएगा, तो 50 लाख लोगों को अगर ये उधार मिला है तो आप ये समझिए कि हर परिवार में 4-5-6 लोग होते हैं, और अगर 2 करोड़ से लेकर और 3 करोड़ तक लोगों को ये सुविधा मिल गई तो अपने आप उस परिवार में शिक्षा के लिए जो गुंजाइश है कितनी बढ़ जाएगी। वो परिवार उस सरकार के रिकॉर्ड में आ जाएगा जिसमें बच्चों को मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था है, मुफ्त वर्दी की व्यवस्था है, अगर उसके पास स्कूल नहीं है तो उसको स्कूल भेजने की, में दाखिला देने की व्यवस्था है, स्कूल जाकर मुफ्त किताबें देने की व्यवस्था है। तो ये जो आंकड़े जब इकट्ठे होते हैं तो वो जो टोंटियां लगी हुई थी ना, जिसको साइफनिंग कहते हैं व्यवस्था में, कि ज्यादातर पैसा बाहर निकल जाता था आम आदमी तक पहुंचने से पहले, तो ये जो डिजिटाइजेशन है इसने उन टोंटियों को बंद कर दिया है, जिससे अब ये है कि सीधे के सीधे जिसकी जरूरत है, जिसके लिए सरकार पैसा दे रही है, जिसके लिए मैंने और आपने टैक्स देकर जो निधि बनाई है वो उसके पास सचमुच में जा रहा है। तो इसका जो परिवर्तन हो रहा है और पहले से शुरू हो गया है और आगे होगा, वो बहुत बड़ा होगा। आप देखिए, इन चीजों की वजह से, इस व्यवस्था से आने वाले 10 साल में भारत में जो शिक्षा का स्तर है वो बिना आपके कुछ बोले किए हुए ही एक अलग स्तर पर चला जाएगा। क्यों? वो सुविधा उन बच्चों को भी जाएगी जो अभी तक वंचित थे। तो ये जो डॉक्यूमेंटेशन होता ना, जब इस तरह की चीजें बनती हैं तो वो जो आंकड़े तैयार होते हैं वो योजना बनाने वाले लोगों के हाथ मजबूत करते हैं, उनको एकदम सही जानकारी देते हैं कि हम ये जो काम शुरू कर रहे हैं इसका किस राज्य में कितने लोगों को फायदा होगा, जो किस आर्थिक स्तर के लोग हैं उनको फायदा होगा। ये कोई छोटी बात नहीं है।
बिल्कुल विजय जी, आखिर में हम उन वित्तीय संस्थाओं की भूमिका पर भी आपसे बात करना चाहेंगे। जैसे अब सरकार टारगेट दे रही है कि जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक है, तो इन बैंकों को इस पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से भी टारगेट मिला कि आपको इतने ऋण देने हैं, तो ये देखने में आया है कि पब्लिक सेक्टर बैंक भी बड़ा रुझान दिखा रहे हैं वित्तीय समावेश की दिशा में। चाहे हमने पीएम जनधन योजना की बात की जब बड़ी संख्या में खाते खुले, और अब ऋण देने की जब बात होती है तो उसमें बैंकों ने बड़ी भूमिका निभाई है और एक माहौल तैयार हुआ है कि अब ऋण अगर आपके पास आपका कारोबार है और आप कारोबार करना चाहते हैं तो पीएम जो मुद्रा योजना है या स्वनिधि योजना है, इनमें बैंकों ने बड़ी भूमिका निभाई है। इस तरह से जो दूसरी वित्तीय संस्थाएं हैं जिसमें एनबीएफसी या डीपीए की हमने बात की, इन भी ऋण देने वाली दूसरी वित्तीय संस्थाओं ने भी अपनी भूमिका निभाई है। तो कैसे जो गरीबी का उन्मूलन जिसकी हम बात करते हैं, शहरों से गरीबी को हटाने में और लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में जो बैंकों की भूमिका है, वित्तीय संस्थाओं की भूमिका है, जो अब जानी जा रही है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
बहुत रोचक परिवर्तन हुआ है। शुरू में हमारे कई मित्र जो बैंकों में मैनेजर या उच्च स्तर के लोग थे, इतनी भीड़ को कैसे हैंडल करेंगे, बेकार में काम होगा, लेकिन अब वही लोग रियलाइज कर रहे हैं और ऐसी ये जो स्टडीज भी आ चुकी हैं कि बैंकों के लिए गरीब आदमी को ऋण देना सबसे ज्यादा सुरक्षित एक्टिविटी हो गई है
जी।
ये पूरी तरह एस्टेब्लिश हो चुका है कि जो छोटा ऋण लेने वाला, छोटा व्यक्ति जिसको हम छोटा व्यक्ति कहते हैं क्योंकि वो गरीब है इसलिए छोटा कहते हैं, वो जब ऋण लेता है तो कॉरपोरेट मालिक के मुकाबले वो ज्यादा ईमानदारी दिखाता है। जो टोटल बैंकों ने पैसा दिया, जो उनको वापस मिला ब्याज समेत, ये जब अब स्टडी हो चुकी है तो बैंक देखकर हैरान है कि कॉरपोरेट्स तो लाखों करोड़ रुपया लेकर और डकार जाते हैं, फिर उसके बाद रीएडजस्टमेंट कराते हैं और फिर मूलधन भी पूरा नहीं लेता है और बैंक रो पीट कर एडजस्टमेंट करता है
जी।
लेकिन ये उधार लेने वाला है, ये उन्होंने पाया है कि ज्यादा ईमानदार है
जी।
पर इसीलिए इंसेंटिव इनको मिल रहा है ना, हर महीने 100 रुपए, उस व्यक्ति के लिए वो 100 रुपए बहुत बड़ी है
बिल्कुल,
लेकिन अर्थव्यवस्था के लिए उससे भी बड़ी है क्योंकि उस 100 रुपए के पीछे उसको अर्थव्यवस्था में 5,000, 10,000, 20,000 रुपए की जो बिक्री है वो उसमें शामिल हो गई, वो जीएसटी में आ गई, वो कैलकुलेशन में आ गई, वो आपका जो नेशनल प्रोडक्शन है जीडीपी उसमें सही आंकड़े आ गए, वो बहुत बड़ा फायदा है। तो इसलिए जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें से जितने समझदार लोग हैं उनको ये समझ में आ गया है कि ये जो छोटा व्यापारी है, छोटा काम करने वाला है, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है
बिल्कुल।
इसको दिया हुआ पैसा वापस भी आएगा, उस पर मुझे वो भी इंटरेस्ट भी मिलेगा, सरकार उसमें से वो भी देती है, सब्सिडी भी देती है और वो बैंक सुरक्षित महसूस कर रहे हैं
जी, जी।
तो इसने आत्मविश्वास बढ़ाया है बैंकों का
निश्चित रूप से। तो पीएम स्वनिधि योजनाओं की तरह जो सरकार की तमाम योजनाएं हैं उनसे निश्चित रूप से आने वाले समय में एक औपचारिक अर्थव्यवस्था की ओर जब हम बढ़ रहे हैं तो उसके सकारात्मक नतीजे आने वाले समय में हमें देखने को मिलेंगे और इसमें वित्तीय संस्थाओं से लेकर एक आम व्यक्ति तक का योगदान जरूर रंग लाएगा। और जिन पहलुओं पर आज हमने विस्तार से बात की विजय जी के साथ की, किस तरह से इन योजनाओं के माध्यम से एक व्यक्ति के सशक्तिकरण के साथ साथ पूरे समाज और राष्ट्र का सशक्तिकरण हो रहा है और अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, और ये आवश्यक है कि असंगठित क्षेत्र और वो व्यक्ति जो हाशिए पर है वो अर्थव्यवस्था से जुड़ेगा तो निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था और हमारी जीडीपी बहुत ऊपर बढ़ सकती है और जिसके नतीजे हम देख भी रहे हैं। विजय जी बहुत बहुत धन्यवाद, चर्चा में आप शामिल हुए, बड़े महत्वपूर्ण विचार हमारे श्रोताओं के सामने आपने इस चर्चा के माध्यम से रखे,
बहुत बहुत धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे पीएम स्वनिधि योजना की महत्वपूर्ण उपलब्धि पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ राजनीतिक पत्रकार विजय क्रांति और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है eirnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।